ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सभी ने सुना। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन ही करेगा विश्व परिवर्तन। जैसे आईने में चेहरे को देखते हैं तो पता चलता है कहाँ क्या ठीक करना है। ऐसे ही आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है तो हम स्वचिंतन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यही कारण है हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर मैं कौन हूँ। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया जाता है कि नो थाई सेल्फ। खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। इसलिए कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने एक काव्य में कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है। हम अपने बाह्य शारीरिक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं। मैं मिस्टर फलाना हूं, फलाने का बेटा हूं, ऑफिसर हूं, डॉक्टर हूं। हम अपना दुनियावी दैहिक परिचय एक दो को देते हैं। सिद्ध है हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं, देहाभिमान में आकर जीवन जीते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक, अगर हम अपने कर्म करते अपनी मन की स्थिति को देखें तो कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं सुंदर हूं, साधारण हूं, काला हूं, गोरा हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं। शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। कुछ एक कर्म व्यवहार में देह संबंधों की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं फलानी का बेटा हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, उद्योगपति हूं, शिक्षक हूं, डॉक्टर हूं। इसलिए हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। यही कारण है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा आज हम ह्यूमन डूइंग बनते जा रहे हैं। कौन क्या करता है, किस पोस्ट पोजीशन पर है, उसके आधार पर हमारा उनके साथ व्यवहार चलता है। और ये प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस इतनी रहती है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम कहते हैं कि मैं एक्स एमएलए हूं, एक्स चीफ इंजीनियर हूं। इस प्रकार देह धर्म की कॉन्शियसनेस रहती। मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, धर्म के अभिमान में रहते हैं। देह की जाति ज्ञाति की भी कितनी कॉन्शियसनेस रहती। मैं ब्राह्मीण हूं, बनिया हूं, राजपूत हूं। इसी कारण धर्म भेद जाति भेद कितने उत्पन्न हो गए। इवन हमें भाषा की भी कॉन्शियसनेस रहती। मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, तमिल हूं, तेलुगु हूं। नेशनलिटी की भी कॉन्शियसनेस रहती कि मैं अमेरिकन हूं, जैपनीज हूं, चाइनीज हूं। हम कह सकते हैं कि हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, विशियस बन गए हैं। हमारा जीवन भोगवादी भौतिकवादी बन गया है। इसलिए प्रैक्टिकली भी हमारा मैक्सिमम समय शक्ति धन देह के प्रति, देह संबंधों के प्रति, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे ही खर्च हो रहा है। प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब आप लगाइए, रोज कितना घंटा हम सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं? कम से कम 7-8 घंटा रोज हम सोते हैं। रोज हम नौकरी धंधे के पीछे कितने घंटे खर्च करते हैं? 8 घंटा कम से कम, बड़े शहरों में तो 10 घंटे लगते हैं। और ये शरीर निर्वाह भी हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? अक्सर कहते हैं ना कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो रोज हम कह सकते हैं कि 12 घंटे सोने में, नहाने धोने में, खाने पीने में खर्च होते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो इसमें ही खर्च हो जाता है, आधा समय तो। 8 घंटे नौकरी धंधे में खर्च होता है। माना 35% टाइम नौकरी धंधे में खर्च होता है, बाकी रहे 2-4 घंटे पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, टीवी रेडियो मनोरंजन में, मोबाइल के पीछे खर्च होता है। ये हमारी रोज की दिनचर्या है। जब कोई हमें आत्म कल्याण व स्व उन्नति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, तो अक्सर क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब देते हैं? टाइम नहीं है। हमारी ऐसी दिनचर्या को देखते हुए स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन देहाभिमान युक्त और सांसारिक बन गया है। जीवन के ऐसे स्वरूप में अब हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देहभान में रहते हैं, देहाभिमान में कार्य करते हैं, क्या हम शरीर हैं? हम शांति से इस बात पर सोचे, क्या मैं शरीर हूं? जबकि हम जानते हैं शरीर के बारे में कि वास्तव में हमारा शरीर क्या है, हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, जैसे और सभी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ, जो कुछ हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग हैं, परिवर्तनशील हैं और आखिरकार नाशवंत है, इसी प्रकार शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। जब हम डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, तो हम कहते हैं पंचत्वम गतः, 5 तत्वों का बना हुआ मानव शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया, जिनको सरल शब्दों में हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है। हम हरेक खुद अपने ही शरीर के साक्षी हैं कि बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर भी कितना बदलता रहता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। अब ह्यूमन बॉडी स्थूल है, प्रत्यक्ष है, हम इन आंखों से देख सकते हैं, इसलिए शरीर के बारे में काफी ज्ञान हम सबके पास है। लेकिन शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब तक चैतन्य शक्ति शरीर में है हम कर्म करते हैं, जब बॉडी चैतन्य शक्ति निकल जाती है बॉडी डेड हो जाती है, इस बॉडी में ये ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, यही आंखें निकाल कर जीवंत व्यक्ति में डालते हैं तो वहां ये ऑर्गन्स काम करते हैं। जब तक चैतन्य शक्ति है, अगर अंगुली कट जाए जल जाए तो हमें अनुभव होता है। उस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद फिर इस बॉडी को काट देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं, कोई अनुभव नहीं होता है। जब तक शरीर में चैतन्य शक्ति है हमारे एक दो के साथ संबंध है, जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है हम क्या कहने लगते हैं कि भाई जल्दी करो, जल्दी सबको सूचना दो, जल्दी तैयारी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो। हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, रूह आत्मा कहते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में कॉन्शियस कहा जाता है, कॉन्शियंट एनर्जी कहा जाता है, जिसको हम लिविंग एंटिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। सरल शब्द में हम उसे आत्मा कहते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है हम कहते हैं प्राण चले गए, लाइट हैज गॉन, दीवा बुझ गया। क्या गया, कैसा गया दिखाई नहीं देता है, पर समझ में आता है, अनुभव होता है कि कोई चैतन्यता निकल गई, शक्ति चली गई। तो मनुष्य आत्मा कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आप सबसे ये है कि हम कौन है? क्या हम पांच तत्व के बने जड़ शरीर हैं, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? क्या उत्तर आता है? हम शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर जड़ है और मैं जड़ नहीं हूं। भल देखने में शरीर आ रहा है, जैसे देखने में भौतिक पदार्थ आते हैं। कहने में आता है बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, माइक चल रहा है, लैपटॉप काम कर रहा है। देखने में चीजें आती हैं, पदार्थ आते हैं, परंतु सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है। देखने में पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, परंतु सत्य ये है कि इलेक्ट्रिक पावर पंखे को चला रहा है, इलेक्ट्रिक पावर माइक को चला रहा है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है। देखने में साधन आते हैं, परंतु इलेक्ट्रिक पावर इसको चला रहा है। इसी प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन सत्य ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं सोच सकती हूं, विचार चलते हैं। ये चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती हैं। बल यंत्र मानव बनाए हैं, देखने में आता है रोबोट काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रोग्रामर के द्वारा जो प्रोग्रामिंग डाला जाता है, उसके आधार पर यंत्र मानव कार्य करता है। तो हम सोचते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, कोई स्वादिष्ट चीज हम खाते हैं, हमने वो चीज खाकर पूरी कर दी है, फिर भी हमें फिर खाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? चैतन्य को होती है या शरीर को होती है? किसको होती? चैतन्य को होती है ना? इच्छा किसको होती है? चीज तो खाकर पूरी कर ली, मुख में पदार्थ नहीं है अब जीव स्वाद ले सके, लेकिन लिया हुआ स्वाद फिर लेने की इच्छा चैतन्य को होती है। हम कोई सुंदर स्थान देखकर आते हैं, अभी सामने वो सुंदर दृश्य नहीं है, परंतु देखी हुई सुंदरता फिर फिर याद आती है, वो चैतन्य को स्मृति आती है। इसलिए हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है। जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं होती हैं, हमें आउटर फोर्स लगाना पड़ता है, तब ये खिसक सकती हैं। हम अनुभव करते हैं। देखिए, कोई बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं, परंतु कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता है, फिर भी आपको खुशी होती है, संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। कोई बुरा कार्य आप करते हैं, किसी को भी पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, भय लगता है, चिंता होती है, अनुभव होता है ना? हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। अगर किसी के कष्ट को, दुख को, दर्द को, मुसीबत को जानने के बाद भी अगर हमें जरा भी सहानुभूति नहीं होती है, हमदर्दी नहीं होती है, दया रहम नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है, इनमें जरा भी दया रहम नहीं है। तो विचार, स्मृति, इच्छा, कर्म, अनुभव, सहानुभूति, ये सब चैतन्यता के लक्षण हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। ग्रामेटिकली भी मैं और मेरा दोनों अलग अलग है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। ये कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी अज्ञानता है कि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशंस रखने वाले हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी भूल खुद को समझने में ही हमने कर ली है। देखो, हम कहते हैं जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, हम कहते हैं फलाना मर गया। मरा कौन और गया कौन? मरा कौन? मरा कौन? शरीर मर गया, डेड बॉडी कहा जाता है। और गया कौन? आत्मा, चैतन्य शक्ति चली गई। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। देखो, हम कहते भी हैं कि मेरे पांव थक गए हैं, मैं अब ज्यादा चल नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ कमजोर है, मैं इतना वजन उठा नहीं सकती हूँ। मेरे सिर में आज बहुत दर्द है, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मेरा पांव मींस मैं पांव नहीं हूँ, मेरे हाथ मींस मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा पेट मींस मैं पेट नहीं हूँ, मेरा सिर मींस मैं सिर नहीं हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, मैं पांव नहीं, हाथ नहीं, पेट नहीं, सिर नहीं, मींस मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो सबसे पहली अवेयरनेस, पहली जागृति आध्यात्मिक दृष्टि से यही हम आत्माओं में होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर। इस एक भूल के कारण आज कितने डिफरेंसेस हमारे जीवन में क्रिएट हो गए हैं। घर घर में इस देह भान के कारण मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार की कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है। लेकिन चित्र में देखिए, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूँ, ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस है। मैं पुरुष हूँ, ये गलत भान है। शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। इसलिए हम कहते हैं मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, और हम सभी एक आत्मा है, और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस एक भूल के कारण आज कितने भेदभाव हैं स्त्री और पुरुष में, बेटा और बेटी में, गोरे और काले के भेदभाव, और जो उससे अत्याचार और अन्याय हुए, इससे पूरा इतिहास भरा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव, ये हल्की जाति ये ऊंची जाति के भेदभाव, आज पूरा विश्व विभाजित हो गया है। कहां हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार की भावना थी, आज पूरा विश्व विभाजित है। कितने लड़ाई झगड़े, दुख और अशांति है। इसलिए अगर हम फिर से विश्व परिवार की भावना स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं, आपसी सद्भावना सामंजस्य लाना चाहते हैं, तो केवल सोल कॉन्शियस लेवल पर ही हो सकता है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा समझना। सुनने में ये बात सिंपल लगती है, कि ये तो हम जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि में कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं? उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। तो देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है ना, चैतन्यता निकल गई। जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी शरीर में रहते हम अपने आप को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। देहाभिमान में जीवन जीते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन गए, इसलिए हम मटीरियलिस्टिक बन गए। इसलिए भल सुनने में जानी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मुख्य और मूल सत्य है जिनकी अवेयरनेस में रहना है, स्मृति में रहना है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है अपने रियल सेल्फ को रियलाइज करना, आत्मचिंतन करना राजयोग की आधारशिला है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, अविनाशी चैतन्य शक्ति है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है, मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है, और आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति में हम भ्रुकुटी में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। हम ये रस्म और रिवाज करते हैं हर शुभ कार्य में, धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में। हम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर हम खुद को आत्मा समझते नहीं हैं, हरेक को आत्म दृष्टि से देखते नहीं है। यहाँ हम तिलक नहीं करते हैं, यहाँ हम खुद को आत्मा समझते हैं और आत्म दृष्टि से देखने का अभ्यास करते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम और आत्मा और शरीर की तुलना से इस बात को रियलाइज करें, शरीर एक मोटर कार के समान है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर कार को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा ड्राइवर के समान है। देखो, एक ड्राइवर दिन रात मोटर कार चलाता है पर वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है। उनको क्लैरिटी है कि मोटर कार अलग है और मैं ड्राइवर इससे अलग हूं। हमें भी ये रियलाइज करना है कि भल हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, पर मैं मुख नहीं हूं, कान नहीं हूं, आंख नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इस मकान की मालिक हूं। देखिए अभी हम इस हॉल में बैठे हैं, हमें स्पष्ट है हॉल अलग है, हम अलग हैं। इस कुर्सी सोफा पर आप बैठे हैं, आपको स्पष्ट है कुर्सी अलग है, मैं अलग हूं। अगर मैं कुर्सी से अटैच हो जाऊं और कुर्सी सहित चलना चाहूं तो सहज होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। बस जीवन मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि हम देहभान से अटैच हो गए हैं। जैसे ही आप अपने आप को देह से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा समझकर कारोबार करेंगे, घर बार चलाएंगे, कितनी भी जिम्मेवारी का कार्य करेंगे, पर अगर ये रियलाइजेशन है कि करने वाली मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, शरीर करनहार है, मैं आत्मा करावनहार हूं, तो हम अपने आप को सहज और हल्का महसूस कर सकते हैं। हमें स्पष्ट है कि वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं, मेरी साड़ी, मेरा शर्ट, मेरा पैंट कहते हैं ना, मैं साड़ी, मैं शर्ट, मैं पैंट नहीं कहते हैं ना। तो शरीर भी एक वस्त्र है, मैं आत्मा इसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं। मैं ड्रेस नहीं हूं, मैं ये रोल नहीं हूं जो प्ले कर रही हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा एक्टर हूं। शरीर एक रथ के समान है, मैं आत्मा रथवान हूं, चैतन्य रथी हूं। गीता का अध्ययन जिन्होंने किया है उनको पता होगा, गीता में आत्मा के लिए रथी और देही शब्द यूज किया गया है। रथ माना शरीर को रथ कहा गया, आत्मा को रथी कहा गया है। इसलिए देखिए जब आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो कहते हैं ना, फलाने की अर्थी उठी। अर्थी मीन्स जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। तो राजयोग का पहला अभ्यास है आत्मचिंतन, आत्मस्मृति में रहना, आत्मदृष्टि से देखना और आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करना। ये अभ्यास हमें बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस बना देता है। अब आत्मा माना क्या, आत्मा किसको कहते हैं? जैसे शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, हाथ, आंख, नाक, कान, मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। शरीर की पांच कर्मेंद्रियां है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हाथ है, इसको भल हम शरीर नहीं कहते हैं, पर हाथ शरीर का अंग नहीं है ऐसा भी तो नहीं कहेंगे ना। तो हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन बुद्धि संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। इसलिए एक बात ध्यान से समझनी है कि मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। इसलिए मन बुद्धि संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। अब मन शब्द से आप सभी परिचित हैं। अक्सर कहते हैं मन की शांति चाहिए, आज मन ठीक नहीं है। बरसों से भक्ति करने वाले अब तक भी क्या कंप्लेन करते रहते हैं, क्या कहते हैं? मन भटकता है। हम भगवान को याद करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता है, कहते हैं ना इसे। तो मन भटकता है मीन्स क्या होता है, क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो शरीर से निकल भटकती है। जब कहते हैं मन भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है, मीन्स क्या होता है, क्या होता है? अनेकानेक विचार आते हैं। बैठे हैं परमात्मा को याद करने और अन्य अनेकानेक बातों के विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मन भटकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा की विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। सोचना ही चैतन्यता की निशानी है। इसलिए एक बात ये समझ लीजिए, मन को विचार शून्य नहीं कर सकते। विचार ही ना आवे ये नहीं हो सकता है। अगर मैं आप सबको कहूं एक मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए, हम मुख से चुप होके बैठ जाएंगे पर मन में कई विचार आएंगे। इसलिए मेडिकल साइंस कहता है अनेकानेक विचार मन में आते हैं। जब हम टेंशन में होते हैं, भय चिंता में होते हैं, तो हमारे विचारों की स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। तो मन का कार्य है सोचना। अब तक बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने मन का अधिक उपयोग किस चिंतन में किया? अब तक अधिकतम कौन सी बातें हम सोचते रहते? हर एक अपने आप को देखिए, हमने अपनी इस अनमोल विचार शक्ति का उपयोग कौन से चिंतन में किया? हम कह सकते हैं कि हमने अपने मन का उपयोग पर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिक किया है। इसलिए देखिए वो ही विचार बार बार आते हैं। शरीर चिंतन, संसार चिंतन, नौकरी धंधा, घर कारोबार, समाज संसार, वही बातें हम सोचते रहते हैं। आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें हम करते हैं, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। कहेंगे अरे 2 घंटे बीत गए बातें करते करते, पता भी नहीं चला, ऐसे कहते हैं ना। देर रात तक तेरी मेरी यहाँ की वहां की इसकी उसकी बातें करने में किसी को नींद नहीं आती है। कहेंगे रात के 12 बज गए, पता भी नहीं चला। यहां हम 10 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं तो भी लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, घड़ी देखने लगते हैं कि कब ये लाल लाइट से सफेद लाइट हो जाए। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए स्वचिंतन में हम स्थित नहीं हो पाते। हमें स्वचिंतन में इंटरेस्ट नहीं आता है, हमें परमात्मा चिंतन में आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते हैं ना, परमात्मा चिंतन में मन लगता नहीं है। हमें फिल्में देखने में, टीवी सीरियल्स देखने में मन लगता है, तब तो घंटों देखने में इतने एकाग्र हो जाते, खाना भी भूल जाते। पैसे गिनने में मन लगता है, हमारा परमात्मा में मन नहीं लगता है, स्व में मन नहीं लगता है। ये क्या बताता है? हम बहिर्मुखी बन गए हैं, संसाराभिमुख बन गए हैं, इसलिए अब हमें परिवर्तन करना है। यहां हमें मन को मारना नहीं है, मन को, मन का दमन नहीं करना है, हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर, शुभ चिंतन में लगाकर मन को सुमन बनाना है, श्रेष्ठ मन बनाना है। इसलिए भल जो आवश्यक है वो दुनियादारी की पारिवारिक बातों को हम सोचें, परंतु क्या हम केवल आवश्यक ही सोचते हैं? नहीं, अनावश्यक, बिन जरूरी, तेरी मेरी, बिगर मतलब की कितनी बातें सोचते हैं, कितनी नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, और इस अनमोल विचार शक्ति को वेस्ट करते हैं। इसलिए व्यर्थ को आवश्यक में चेंज करें, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो मन का कार्य है सोचना। अनेक विचार मन में आते हैं, पर उसी क्षण सभी विचार कर्म में नहीं आते हैं। मन में कई विकल्प आते हैं, ये करें न करें, क्या करें, ऐसा करें कैसा करें, अनेक ऑप्शंस मन में आते हैं, पर हम कोई एक ऑप्शन चुनते हैं और फिर कर्म में लाते हैं। तो मन के अनेक विचारों पर, मन के अनेक विचारों को समझना, सिलेक्ट करना, निर्णय करना, ये बुद्धि का कार्य है। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर को बुद्धि कहते हैं। इसलिए बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। तब कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है, बुद्धि उसकी लगाम है। पर आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हम निर्णय करते हैं, ये बात मुझे बार बार नहीं सोचनी है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, वही विचार बार बार आते रहते हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि बुद्धि कमजोर, पतित, भ्रष्ट बन गई। इसलिए बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। हमने अपना बुद्धि योग उन व्यक्तियों से, उन पदार्थों से, उन व्यसनों से, विकारों से, व्यर्थ बातों से बुद्धि को आसक्त किया है, जहां से बुद्धि का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, कोई एम्पावरमेंट नहीं होता है। इसलिए बुद्धि कमजोर बन गई। यही कारण है बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। हम गाते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। परमात्मा सद ज्ञान देते हैं, सद ज्ञान से सद्बुद्धि हमें प्राप्त होती है, तब हमारी सदगति अर्थात सत्य के मार्ग पर हमारा जीवन चलता है। इसलिए राजयोग में हम बुद्धि योग, कोई महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा से नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से योग लगाते हैं। और बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। देखो, हमारे भाई बहनों ने आपको माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, आपको मन में कई विचार चले होंगे, जाएं न जाएं, ये काम है वो काम है, क्या करें क्या सिखाएंगे, पर आपने निर्णय किया और प्रैक्टिकल आप आए, ये आपका कर्म हुआ। तो बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है, रिकॉर्ड होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, दैनिक साधारण कर्म करते हैं, खुलेआम करते हैं या गुफा में छिप कर करते हैं, हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है। कर्म के संचित प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। हम एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार गुस्सा करते रहते हैं, वो प्रभाव संचित हो जाता, हमारा स्वभाव गुस्सेल बनता जाता है। फिर हम कहते हैं क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई, टेंडेंसी बन गई, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। हम दो बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार झूठ बोलते रहते हैं, हमारी आदत बन जाती है, फिर अनावश्यक छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहते। छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। इसलिए अगर संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हमें कर्म में कंट्रोल कर लेना चाहिए। हमें अपने व्यवहार को यथार्थ बनाना चाहिए। और अगर हम अपने कर्म व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए, क्योंकि विचार कर्म का बीज है। पहले मन में बात आती है ना, विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं। और हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो कोई और चीज साथ नहीं ले जाती है, पर जीवन भर किए हुए कर्मों से बने संस्कारों को साथ ले जाते। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। क्यों कोई आत्मा का धनाढ्य परिवार में जन्म, किसी का गरीब परिवार में, किसी के सुसंस्कारी परिवार में, किसी के बदचलन वाले परिवार। इस जीवन के कर्म तो शुरू भी नहीं हुए, ये पूर्व जन्मों से बने संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं और उस अनुसार जीवन स्थिति आत्मा को प्राप्त होती है। हम सभी अपने संस्कार को चेक करें, स्वदर्शन करें। हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं, विकृत हो गए हैं। कम या ज्यादा मात्रा में हम सभी आत्माएं पतित, भ्रष्ट, दुखी और अशांत बन गए। कोई अभिमान के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ लालच के वश है, कोई मोह आसक्ति के वश है, कोई ईर्ष्या, वैर, द्वेष, आलस्य के वश। हम कह सकते हैं हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में पतित, दुखी, अशांत, तमोप्रधान बन चुके हैं। आपस में तो झूठा अभिमान होने के कारण हम स्वीकार नहीं करते। कोई अगर कह भी दे कि आपका ये स्वभाव ठीक नहीं है, हम सुन नहीं सकते हैं। वो हमारी एक भूल बताते हैं, हम उनकी चार भूल बता देते हैं कि रहने दो, हमें पता है आप कैसे हैं। क्योंकि झूठा अभिमान है, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई पवित्र महान आत्माओं से मिलते हैं, कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो हम खुद उस समय रियलाइज करते हैं। इसलिए आरती, भजन, प्रार्थना में गाते हैं स्वीकार करते हैं। गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, कहते हैं ना भगवान को आरती में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपती हूं। तब हम रियलाइज करते हैं, अगर हमें संस्कारों को बदलना है तो एक और सत्य को हमें समझना है कि हम सभी आत्माएं ओरिजिनली पतित नहीं हैं। हम सभी आत्माएं ओरिजिनली पावन हैं, सत्य हैं, शुद्ध हैं। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, हमारे मूल गुणधर्म है। इसलिए हमें जीवन में ये चाहिए। हरेक को अपने जीवन में क्या चाहिए? ये सात गुणधर्म चाहिए, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है, न कि अशांति। कितना भी व्यक्ति गुस्सा करके आखिर शांत हो जाता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है। कोई भी 24 आवर्स गुस्से में नहीं रह सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अब आपका मिजाज शांत हुआ, अब हम आपसे बात करें, दो बात पूछें, क्योंकि हमारा स्वधर्म आत्मा का गुणधर्म शांति है। यही कारण है हम यहां आपस में मिलते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, एक दो को ओम शांति कहते। ओम मीन्स आत्मा, शांत आत्मा है। हम एक दो को स्वधर्म की याद दिलाते ताकि हम शांति से मिले, शांति से कार्य करें। हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? क्या चाहिए, क्या चाहिए? हम सुख के लिए प्रयास करते हैं ना, हम धन कमाते हैं ताकि हम साधन लाएं, साधनों से सुविधाएं होती है, पर इन सुविधाओं का सुख तब अनुभव होता है जब मेरी आत्मस्थिति सुख की है। अगर मनोस्थिति, मेरी आत्मस्थिति सुख चैन की नहीं है तो कितने भी वैभव हों, अपार महल हों, उसमें भी सुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमें इस आत्मस्थिति का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा सुख स्वरूप, सुख बाहरी साधनों में नहीं है, मैं आत्मा सुख स्वरूप। शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। हमें सब प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, वो अच्छा लगता है। कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, कोई थोड़ा भी हमें निग्लेक्ट करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। यही कारण है व्यक्ति शरीर से बूढ़ा है, युवा है, बच्चा है, हर आत्मा को प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, न कि कोई हमारी घृणा नफरत करे वो, या उदास निराश रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उससे खुशी में लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, हमें हर बात जानना, सीखना, समझना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से पवित्रता आती है। मैं आत्मा पवित्र शुद्ध स्वरूप, इसलिए हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता महानता लगती है, न कि विषय वासना। हमें सच्चरित्रवान अच्छे लगते हैं, बदचलन वाले नहीं। ज्ञान सद्ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति और प्रेम आता है। बताया ना, भाईचारा आता है। मन की कामनाएं वासना कम हो जाती है, मन शांत होने लगता है, रूहानी प्यार आता है। और जब जीवन में शांति और आपस में शुद्ध प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, तो सुख की अनुभूति होती, सुख चैन जीवन में आता है। और सुख चैन है तो आनंद है, खुशी है। इन मूल्यों से ही आत्मा शक्तिशाली बनती। इसलिए हम ये याद रखें, मैं शांत आत्मा, शुद्ध आत्मा। अगर हम यही सोचेंगे कि मैं कहता हूं ना, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मेरा स्वभाव ही गुस्से का है, आप यही सोचेंगे कहेंगे तो गुस्सा ही करते रहे। तो योग में, साइलेंस में बैठकर हम सबसे पहले खुद की रियलिटी को रियलाइज करते हैं, खुद खुद को याद कराते हैं और उस अनुभूति में स्थित होते हैं। लास्ट बात है, हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है, ये वर्क प्लेस है। इसलिए हम कहते हैं कि सृष्टि रंगमंच है, ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं। संसार मुसाफिर खाना कहते हैं, जीवन यात्रा कहा जाता है, आत्मा को मुसाफिर कहते हैं। संसार रैन बसेरा कहते हैं, और ये हम जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, परंतु हम ये भूल जाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब याद आता है कि देखो चला गया, क्या ले गया, तब याद आता है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर ये नहीं पता है कहां से आए हैं, कहां जाना है। चित्र में सबसे ऊपर बताया है, हम आत्माओं का असली घर, जिसे रूहों की दुनिया, सोल वर्ल्ड, शांति धाम, परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। ये हम आत्माओं का असली घर है। ये दुनिया पांच तत्व की बनी है, ये फिजिकल वर्ल्ड भौतिक दुनिया है। इन पांच तत्वों से पार प्रकृति का छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय तत्व है, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। हम आत्माएं इस ब्रह्म लोक की निवासी, वहां शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया। यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज करते हैं, ये टॉकी वर्ल्ड है। हमारा असली घर शांति धाम है। अगर इस दुनिया में रहते हुए ये सत्य हम याद रखें कि ये कर्म क्षेत्र है, हमारा असली घर परम धाम है, तो हम इस दुनिया में रहते भी संबंध, जिम्मेवारियां, कारोबार निभाते हुए भी हम अनासक्त कर्मयोगी बन सकते हैं। इस शरीर में रहते हुए ये सत्य अगर उठते बैठते चलते फिरते याद रखें कि मैं आत्मा हूं, तो इस देह में रहते हर क्षण देह द्वारा कर्म करते भी हम आत्माभिमानी बन सकते। ये है राजयोग का प्रथम लेसन, स्वयं को यथार्थ रूप से जानना, पहचानना, मानना और उस आत्मधर्म अनुसार चलना। ये है राजयोग की पहली प्रैक्टिस। हम 5 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठेंगे तो तो आप थकेंगे नहीं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग साइड में रख दें, हाथ में गोद में लेकर न बैठे। एक दो से अलग अलग डिटैच होकर बैठेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर शांति धाम में जाएंगे। हमें साइलेंस में बैठकर चिंतन करना है। ये आपका नया अभ्यास है इसलिए मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी। जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है। हमें मुख से आवाज करके रिपीट नहीं करना है। उस विचार को समझना है, उस अनुभूति में स्थित होना है। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आंख बंद करके बैठेंगे तो निंद्रा आ जाएगी। आंखें स्वाभाविक खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखें। इस अवेयरनेस के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। हमेशा योग अभ्यास कराने कोई बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे सभी हॉल्स में, योग रूम्स में सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र है। जैसे ब्रह्मा बाबा आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करते हैं, हमें भी ऐसे ही चिंतन करना है। तो हम उनके मस्तक में देखें कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से अलग हो जाइए, साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच अपने चैतन्य ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। जीवन जीना माना ही कर्म करना, कर्म फल भोगना। मुझ आत्मा का असली घर इस दुनिया से दूर है। पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी परे शांति धाम है, जहां सर्वत्र अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परम धाम को देख रही हूं। मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हूं। सर्वत्र शांति छाई हुई है। मैं आत्मा अपने निजी गुण शांति स्वधर्म में स्थित हूं। मैं आत्मा सत्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मैं सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूं, चैतन्य शक्ति हूं। ओम शांति।